आस्तिक की आंखें आंसुओं से लाल हो गई थी। आस्तिक का वो डर जो वो हर रात सहता आ रहा था आज अचानक से उसके सामने आ गया था। वो उस रात को कभी नहीं भूल सकता है। कैसे भूल जाएगा वो उस रात को जब उसकी माँ बिना कपड़ों के घर लौटी थी। उसका शरीर इस तरीके से नोचा गया था जैसे गिद्धों ने उसे खा लिया है। उस रात आस्तिक को समझ आ गया था कि उसकी माँ के साथ क्या हुआ है और वो नन्हा सा बच्चा अचानक से उस रात बड़ा हो गया था। आस्तिक की माँ ने कभी उसे नहीं बताया कि उसके साथ क्या हुआ है, ये सोचकर कि कहीं वो लोग आस्तिक को नुकसान न पहुंचा दें। वो लोग पॉलिटिशियन से जुड़े हुए थे इसीलिए बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे। अगर आस्तिक उन पर कुछ भी एक्शन लेता तो वो लोग आस्तिक को जान से मार सकते थे। इसीलिए उसकी माँ ने कभी भी आस्तिक को इस दुर्घटना के बारे में नहीं बताया। और घर में आग का लग जाना एक दर्दनाक याद है उन सबके जीवन का। वो आग इतनी भयंकर थी कि आज भी कीर्ति आग से डरती है। आस्तिक की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कस के अपनी आंखें बंद कर ली और वो भयंकर याद जो उसके दिमाग में थी वो फिर से आने लगी। इस दुनिया ने उसके साथ बहुत जुल्म किया है, उसके परिवार को मौत के मंजर तक पहुंचाया है। आस्तिक गुस्से में अपने मन में कहता है, मैं उन सबको नरक दिखाऊंगा, उन सबको ऐसी मौत मारूंगा कि वो लोग दोबारा जन्म नहीं होना चाहेंगे, जिसने मेरी माँ के साथ ऐसा किया है और जिसने मेरे भाई बहनों को दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया था। मैं उन लोगों की ऐसी दुर्गति करूंगा कि उन लोगों की सात पुश्तें भी बेनस्ल पैदा होंगी। आस्तिक अपने ख्यालों से तब बाहर आता है जब कल्पना जी अपने आंसू पोंछते हुए आस्तिक को देखकर कहती हैं, वैसे मैं तो तुमसे ये पूछना ही भूल गई कि तुमने मुझे ढूंढा कैसे। कितने साल बाद एक आदमी मेरे दरवाजे पर आता है और कहता है कि सीमा का बेटा मुझसे मिलना चाहता है। जब उसने मुझे तुम्हारा नाम बताया तो मैं हैरान रह गई। मैं तुम्हारा नाम कभी नहीं भूल सकती थी क्योंकि सीमा अक्सर तुम्हारा नाम लिया करती थी, पर जब उस आदमी ने कहा कि उसके बच्चे जिंदा हैं तो मैं हैरान रह गई, लेकिन साथ ही साथ मैं बहुत खुश भी हुई थी ये जानकर कि उस दर्दनाक हादसे में तुम लोगों को कुछ भी नहीं हुआ। पर बेटा, तुम्हारी माँ का न्याय अभी भी बाकी है। उन लोगों ने बहुत दरिंदगी दिखाई है सीमा के साथ, तुम उन्हें छोड़ना मत। आस्तिक का धीरे धीरे खून खौल रहा था। उसका मन कर रहा था वो उन लोगों को एक साथ घसीटते हुए सिग्नल के चौराहे पर लाए और जिंदा आग लगा दे, लेकिन आस्तिक ने अपने दर्द का घूंट पीते हुए कल्पना जी से कहा, अगर उन लोगों को इतनी आसानी से मार दूंगा तो उन्हें उस दर्द का एहसास कैसे होगा जो मेरी माँ को हुआ था। मैं उन्हें इतनी आसान मौत नहीं दूंगा, उनकी ऐसी हालत करूंगा कि उन्हें अपनी जिंदा होने पर अफसोस होगा। मैं उन्हें तड़पता हुआ देखना चाहता हूँ। आस्तिक अपनी जगह से खड़ा होता है और कल्पना जी से कहता है, शुक्रिया मुझे हर बात बताने के लिए। आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपके वापस जाने का इंतजाम करवा दूंगा। कल्पना भी मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाती है। आस्तिक वहां से चला जाता है और बाहर निकलते ही उसका सामना एक दूसरे आदमी से होता है। वो आस्तिक को देखकर कहता है, राजा साहब कुछ पता चला? आस्तिक हाँ में सर हिलाता है और कहता है, हाँ नमन पता तो चल गया है, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें कल्पना आंटी कहाँ से मिली? नमन ने भी मुस्कुराते हुए कहा, क्या राजा साहब, मैं जासूस हूँ, ये तो मेरा काम है। आपने मुझे नाम बताया, जगह बताई, बाकी उन्हें ढूंढना तो मेरे बाएं हाथ का खेल था। और कोई मदद चाहिए तो मुझे जरूर याद कीजिए। आस्तिक ने अपने फोन से एक नाम नमन को देते हुए कहा, नमन ये 25 साल पहले की एक पॉलिटिकल पार्टी है, पता करो उस समय इस पॉलिटिकल पार्टी में हाई पोजिशन पर कौन कौन से मेंबर मौजूद थे और वो लोग अब कहाँ हैं। नमन उस पॉलिटिकल पार्टी का नाम और उसका लोगो अपने फोन में लेता हुआ कहता है, 2 दिन में हो जाएगा सर। द रॉयल ऑफिस। शारदा जी इस समय आस्तिक की कंपनी में सफाई वाली का काम कर रही थी। उसे बहुत ही अपमानित और शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रही थी, पर फिर भी वो काम कर रही थी। उसने अपनी हालत के बारे में अरुणिमा से बात करने की सोची। उसने सोचा कि अगर वो अरुणिमा को ये बता देगी कि आस्तिक उसके साथ क्या कर रहा है तो शायद वो उसे बचा लेगी। लेकिन आस्तिक ने अरुणिमा और शारदा जी के कॉन्टैक्ट की सारी कड़ियां ही खत्म कर दी थी। शारदा जी चाह के भी अरुणिमा से बात नहीं कर पा रही थी। शारदा जी इस वक्त आस्तिक के केबिन में बैठकर फर्श पर पोछा लगा रही थी। तभी दरवाजा खुलता है और आस्तिक अंदर आता है। शारदा जी को इस तरीके से काम करता देख आस्तिक के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है और आस्तिक अपने उन गंदे जूते के साथ ही उस पोछा लगे हुए फर्श पर चलते हुए कहता है, मुझे गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है, फर्श इतना चमकना चाहिए कि मेरा चेहरा उसमें नजर आए। शारदा जी गुस्से का घोंट पीकर रह गई। उसने जल्दी से पोछा दोबारा पानी में डाला और ठीक से पोछने लगी। जल्दी से फर्श की सफाई करके वो वहां से निकल जाती है और सीढ़ियों के पास जाकर अपने गुस्से पर काबू पाने की कोशिश करती है। तभी उनका फोन बजता है। वो देखती हैं कि प्रताप का मैसेज है।
वो उसे मिलने के लिए बुला रहा है। शारदा जी वैसे ही गुस्से में आग बबूला थी। उन्होंने मैसेज में प्रताप को रिप्लाई किया, मैं इस समय बहुत परेशान हूँ, मुझे तुम्हारी किसी भी फालतू बकवास में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन प्रताप ने कहा कि कोई फालतू बात नहीं है, मेरे पास आस्तिक रायचंद की बहुत बड़ी पास्ट हिस्ट्री है, तुम्हें यहाँ आना चाहिए। इसके बाद शारदा जी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसे कुछ भी करके बस आस्तिक के बारे में सच जानना था, जो उसके मन के किसी कोने में एक डर की तरह बना हुआ था। बस वो चाहती थी वो डर सही साबित ना हो। उसके अतीत की कड़ियां इस तरीके से उसके सामने नहीं आ सकती हैं। द रॉयल गेस्ट हाउस। पृथ्वी एक जीप तैयार कर उसने पेट्रोल की टंकी चेक की और जीप की स्थिति को जांचा। उसके बाद वो अंदर गेस्ट हाउस में जाता है और सीधे जाह्नवी के कमरे में जाते हुए कहता है, चलो गाड़ी तैयार है। जाह्नवी का पैर लगभग ठीक हो गया था, लेकिन फिर भी उसमें थोड़ी बहुत स्वेलिंग अभी बाकी थी। जाह्नवी धीरे धीरे अपनी जगह से उठने की कोशिश करती है और धीरे धीरे चलने लगती है, लेकिन पृथ्वी जब उसे ऐसा करता देखता है तो जल्दी से जाह्नवी के पास आता है और उसे अपनी गोद में ले लेता है। जाह्नवी एक पल के लिए हैरान हो जाती है, उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं, लेकिन पृथ्वी बिना किसी प्रतिक्रिया के उसे अपनी गोद में उठाकर सीधे बाहर लेकर आता है और जीप में बिठा देता है। दूसरी तरफ से पृथ्वी खुद ड्राइविंग सीट पर बैठता है। जाह्नवी हैरानी से पृथ्वी को देखकर कहती है, आप मुझे दिल्ली छोड़ने जा रहे हैं? पृथ्वी जीप स्टार्ट करते हुए कहता है, नहीं, रास्ते में छत्तीसगढ़ पड़ेगा, तुम्हें वहीं पर छोड़ दूंगा। जाह्नवी की आंखें छोटी हो जाती हैं और वो कहती हैं, अरे लेकिन मुझे तो दिल्ली जाना है ना।